रफ़ीउद्दौला जो शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था, उसकी मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक गद्दी पर बैठा। सैयद बंधुओं ने जहान शाह के 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि प्रदान करके गद्दी पर बिठाया। कालांतर में उसकी विलासतापूर्ण प्रवृत्ति के कारण उसे रंगीला की उपाधि भी मिली। उसके समय निजामुल मुल्क तथा मोहम्मद अमीन खां तुरानी दल के नेता थे। सैयद बंधुओं में हुसैन अली को हैदर खान ने मार डाला तथा 1724 में अब्दुल्ला खां को विष पिलाकर मार डाला। सत्रह में निजामुल मुल्क वजीर नियुक्त हुआ। उसने प्रशासनिक सुधार लाने का प्रयत्न किया, परंतु अंततः सम्राट की संदेहास्पद प्रवृत्ति के कारण वो दक्कन चला गया और दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव डाली। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सादत खान ने अवध में तथा मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। मोहम्मद शाह ही ऐसा शासक था मुगल काल में, परवर्ती शासकों में औरंगजेब के समय के बाद के, जिनमें जिसके काल में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना शुरू हो गई थी। तो ये तीन इसके काल में स्थापित हुए। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1737 में केवल 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। में ईरान का नेपोलियन के नाम से विख्यात नादिर शाह, उसने भारत पर आक्रमण किया और जब नादिर शाह ने कंधार पर हमला किया तो मोहम्मद शाह ने उसे विश्वास दिलाया कि भगोड़ों को काबुल में शरण नहीं दी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब नादिर शाह ने एक दूत भेजा तो दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई। नादिर शाह ने इसे भारत पर आक्रमण का प्रत्यक्ष कारण बना लिया। चौबीस फरवरी 1739 को करनाल में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य युद्ध हुआ। निजामुल मुल्क कमरुद्दीन तथा सादत खां मुगल सेना की तरफ से थे। युद्ध मात्र 3 घंटे चला। युद्ध के पश्चात निजामुल मुल्क ने शांति दूत की भूमिका निभाई। दिल्ली में कुछ मुगल सैनिकों ने फारसी सैनिकों का वध कर डाला। इस पर क्रुद्ध होकर नादिर शाह ने दिल्ली में सामूहिक कत्लेआम करवाया। दिल्ली से वो अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया। कश्मीर और सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेश तथा थट्टा पर भी नादिर शाह का ही अधिकार हो गया। इसके बाद आता है अहमद शाह, जो कि 1748 से 1754 तक था। अहमद शाह जो था वो इसी का, मोहम्मद शाह का पुत्र था। इसकी माता एक नृत्यांगना थी उधमबाई। अहमद शाह के शासनकाल में उधमबाई और उसके प्रेमी जावेद खां के हाथों में शासन की बागडोर थी। माता भी नर्तकी और उसका पति, पति भी नहीं, पति तो मोहम्मद शाह था, उसका प्रेमी जावेद खां, उनके हाथों में शासन की बागडोर थी। आप समझ सकते हैं किस तरह का शासन रहा होगा। इसके शासनकाल में 1748-1749 में अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी अब्दाली ने आक्रमण किया और उससे संपूर्ण प्रदेश का अधिकार पत्र लिखवा लिया। यह बहुत विलासी व्यक्ति था। उसने अपने 2.5 वर्ष के पुत्र महमूद को पंजाब का गवर्नर तथा 1 वर्ष के बच्चे को कश्मीर का गवर्नर एवं 15 वर्ष के बच्चे को उसका डिप्टी नियुक्त कर दिया। इसके समय कालांतर में गाजीउद्दीन वजीर बना और उसके बाद इमाद उल मुल्क वजीर बना। इसके पश्चात अगला शासक आता है आलमगीर द्वितीय। ये 1754 से 1759 तक मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने मुगल सम्राट अहमद शाह को अंधा करके उसके स्थान पर आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर सत्तारूढ़ किया। अभी तक वजीर मंत्री जो थे, मंत्री हैं वजीर हैं एक ही बात है, इन्हीं लोगों की वजह से राजा बन रहे हैं। ये भी इमादुल मुल्क की वजह से आलमगीर द्वितीय, पहले वाले राजा को अंधा कर दिया और उसके स्थान पर आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार उसने शासन के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। आलमगीर द्वितीय जो था ये भी ये जो था जहांदार शाह का पुत्र था। जब वह अपने वजीर के चंगुल से मुक्ति पाने की चेष्टा कर रहा था तो उसे मार डाला गया। यानी वजीर ने ही इसे बिठाया, और चूंकि ये जब बिठाते थे जैसे सैयद बंधु थे या इससे पहले जो भी थे जुल्फिकार खान थे, जैसे इन्होंने बिठाया गद्दी पे, तो ये पूरी शासन की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहते थे। तो जैसे ही राजा इधर उधर करता था तो उसको हटा देते थे रास्ते से ही। ऐसा ही हुआ आलमगीर द्वितीय के साथ, और जैसे ही इसने मुक्ति पाने की चेष्टा की इसको मुक्ति दे दी गई। उसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 4थी बार आक्रमण भी किया और वो मथुरा तक आगे बढ़ गया। अब अगला आता है शाह आलम द्वितीय। ये 1759 से 1806 तक, इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। जब ये शासक बन गया तो 12 वर्ष तक तो ये दिल्ली नहीं गया। इसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर की लड़ाई लड़ी, लेकिन हार जाने के बाद कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में रहा। 1772 में ये मराठों की सहायता से दिल्ली पहुंचा। 1765 में इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी और कंपनी ने उसे 26 लाख रुपए वार्षिक की राशि देने का वचन दिया। रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर ने इसे अंधा कर दिया और उसे गद्दी से हटाकर बिदारख्त को गद्दी पर बिठाया। परंतु मराठों ने उसे पुनः गद्दी पर बिठा दिया शाह आलम को। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1806 में ये मृत्यु तक अंग्रेजों की पेंशन पे जीवित रहा। इसके बाद अकबर द्वितीय, सिर्फ नाम के अकबर, 1806 से 1837 तक ये सिर्फ नाम मात्र के शासक थे। एक ही काम के लिए जाना जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा था। अब आते हैं मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है क्योंकि शायरी का इन्हें बहुत शौक था। अठारह के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था और इसी कारण इन्हें बंदी बनाकर रंगून के लिए निर्वासित कर दिया गया था और 1862 में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई और रंगून में ही इनकी कब्र भी है। तो इस प्रकार मुगल वंश का अंत हो गया।